नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की जॉर्डन यात्रा पर अम्मान पहुंचे, कहा इस यात्रा से जॉर्डन के साथ संबंध मजबूत होंगे। सरकार ने कहा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। लोकसभा ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नेटो में शामिल न होने पर सहमति जताई। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र सौंपने की अमरीका की मांग ठुकराई। नई दिल्ली में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के अम्मान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जाफर हसन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए श्री जाफर हसन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जॉर्डन वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से वे अत्यंत भावुक हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका स्नेह भारत की प्रगति पर गर्व और मजबूत सांस्कृतिक बंधन भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच अटूट संबंध दर्शाते हैं। उन्होंने भारत जॉर्डन संबंधों को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की निरंतर भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया। एक रिपोर्ट।
आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये दौरा पिछले 37 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का जॉर्डन का पहला द्विपक्षीय दौरा है। ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रहा है जब भारत और जॉर्डन राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जॉर्डन की राजधानी में अपने होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक औपचारिक रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा। अम्मान से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री अम्मान से कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी बुधवार को ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचेंगे। राज्यसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सुधार प्रदर्शन और रूपांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत देश विकास की ओर अग्रसर है।
हमारा देश लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनावी प्रक्रिया इस लोकतंत्र को निरंतर पुष्पित और पल्वित करती आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर सेक्टर में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलकर विकसित भारत के निर्माण की ओर तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है।
श्री मेघवाल ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के डॉक्टर एम थंबीदुराई ने कहा कि शुद्ध और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है और पारदर्शिता मतदाताओं को सशक्त बनाती है। भारतीय जनता पार्टी सुलता देव, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद, YSRCP के एस निरंजन रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के दिनेश शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। सदन की कार्यवाही कल सवेरे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र और स्वशासी संस्थान बनाने में सुविधा प्रदान करना है।
इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनाने में सुविधा देने और उत्कृष्टता सुदृढ़ तथा पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा देना है।
विपक्षी दलों ने सदन में विधेयक का विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कई सांसदों ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श पर जोर दिया। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और अभिवर्धन विधेयक 2025 शांति प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और तकनीकी पहलुओं के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों को पहले बैच की मंजूरी दे दी है। इसमें 1,32,000 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई। इसमें 41,455 करोड़ रुपए से अधिक के शुद्ध नकद व्यय के प्रस्ताव भी शामिल हैं। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एक उत्तरदायी सरकार के लिए पूरक मांगे आवश्यक हैं। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने आरोप लगाया कि सरकार सब्सिडी के नाम पर विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। संसद के दोनों सदनों में आज की कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन आज दोनों सदनों में एनडीए सांसदों ने कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। इस मुद्दे पर लोकसभा को 2 बार और राज्यसभा को 1 बार स्थगित करना पड़ा। जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही पुनः शुरू हुई तो सदन में 3 विधेयक पेश किए गए। ये है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक तथा निरसन और संशोधन विधेयक 2025। हालांकि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। इसके बाद लोकसभा ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की। जब राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो प्रश्नकाल में संबंधित मंत्रियों द्वारा मंत्रालयों और विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया गया। बाद में उच्च सदन ने चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर से शुरू की। अनुपम और सुपर्णा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले 11 वर्ष में देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में हुए विकास पर श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत अब कोयले का 4वां सबसे बड़ा शोधन केंद्र है। उन्होंने पिछले वर्ष 1 अरब टन से अधिक कोयले के उत्पादन और आयात में 8% की कमी का उल्लेख किया। श्री गोयल ने बताया कि पवन ऊर्जा क्षमता अब बढ़कर 53 गीगावाट हो गई है।
11 वर्षों में बदलाव कितना बड़ा हुआ है और ऊर्जा एक क्षेत्र ऐसा है जो एक सूत्र में आपको बता सकते हैं। मोदी जी की सोच गरीबों तक विकास पहुंचा है, रोजगार के नए अवसर मिले, स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा योजना का सफलता देखिए, स्वनिधि योजना की सफलता देखिए, स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया की सफलता देखिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली के रक्षा संपदा भवन में आयोजित रक्षा संपदा दिवस समारोह में शामिल होंगे। श्री सिंह देश भर में फैले 61 छावनी बोर्डों के रक्षा भूमि प्रबंधन और नगर प्रशासन के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री यादव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को धन का तर्कसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मापदंडों को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर कड़ाई से कार्यान्वयन का भी आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भाजपा नेता हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा यानी स्पर्श पहल से नवंबर 2025 तक भारत और नेपाल में 31 लाख से अधिक रक्षा पेंशन भोगी जुड़े हैं। स्पर्श डिजिटल इंडिया की एक प्रमुख पहल है जो देश का पहला संपूर्ण डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। मंत्रालय ने कहा कि स्पर्श भारत की सबसे बड़ी एकीकृत पेंशन प्रणाली है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति कल से नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन करेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस आयोजन का उद्देश्य देश भर की एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों को प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नेटो में शामिल होने की यूक्रेन की कोशिश छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि श्री ज़ेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति पर अमरीका के दूतों के साथ बातचीत में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को सौंपने के अमरीका के दबाव को खारिज कर दिया है। बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमरीका और कुछ यूरोपीय देशों ने उसके नेटो में शामिल होने के प्रयासों को खारिज कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन को उम्मीद है कि पश्चिमी देश नेटो के सदस्यों के बराबर गारंटी देंगे। मोरक्को के अटलांटिक तटवर्ती प्रांत सफी में कल मूसलाधार वर्षा से अचानक आई बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से घर और दुकानें जलमग्न हो गईं और कई इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गईं। इस बीच बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कल और भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली स्थित आर्मी हाउस में विजय दिवस एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थीं। कार्यक्रम में स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों और विशिष्ट क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। ये सेना के आधुनिक नवोन्मेषी और आत्मनिर्भर बल में निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। भारत 17 दिसंबर से नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान भारत स्वास्थ्य और कल्याण पर वैश्विक संवाद का केंद्र बिंदु बनेगा। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने सीनियर और जूनियर स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किए। ये मुकाबले नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में खेले गए। फाइनल में मनु भाकर ने 36 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया, जबकि दिव्या ने 32 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। वहीं अंजलि चौधरी ने 28 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को आईसीसी ने नवंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। शेफाली ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 78 गेंद पर 87 रन बनाए थे। महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा स्कोर है। मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बदलती जीवन शैली के बीच हड्डियों के स्वास्थ्य की देखभाल पर चर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता भाग लेंगी। श्रोता हड्डियों से संबंधित बीमारियों के लक्षणों, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जॉर्डन यात्रा पर अम्मान पहुंचे। कहा इस यात्रा से जॉर्डन के साथ संबंध मजबूत होंगे। सरकार ने कहा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से फर्जी मतदाताओं को हटाया जा सकेगा। लोकसभा ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नेटो में शामिल न होने पर सहमति जताई। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र सौंपने की अमेरिका की मांग ठुकराई। और नई दिल्ली में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।